मिलने के लिए आतुर थीं, अतएव उनके द्वारा मोह ली गईं। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली डुली नहीं, लज्जावश वे उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रहीं। परिधाय सवासांसीं प्रेष्ठ संगम लज्जितां, प्रेष्ठ संगम सज्जितां गृहेत चित्तानो चेलोस तस्मिन् लज्जायिते क्षणां। तात्पर्य है, अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गईं। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उन्होंने उनके मन भी चुरा लिए। गोपियों ने इस घटना को इसका प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा भी उनसे इस तरह का खेल करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण हम पर अनुरक्त हैं, अतः उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भाव की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहीं से तस्मस नहीं हो सकी। कृष्ण ने उनकी लज्जा चुरा ली, उन्हें नग्न ही जल से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया, किंतु अब पुनः अपने वस्त्रों से सज्जित होने के बाद उनके समक्ष उन्हें लज्जा आ रही थी। इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं, अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श कामिया धृत व्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो बलाम। हे साध्वी कन्याओं, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ, अवश्य ही सत्य होगा। संकल्प विदिता साध्यो भवती नाम दर्शनम मया अनुमोदिता सो सौम सत्यो भवितुम अर्हति। तात्पर्य में लिखा है, जिस प्रकार कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं, उसी तरह गोपियों में अशुद्ध इच्छाएं नहीं है, अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास इंद्रिय तृप्ति कामना नहीं है, कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा है। अपनी प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु सबसे सुंदर पुरुष के रूप में देखती हैं। ये सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से तुष्ट होने वाले नहीं है, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेम भक्ति से वे बस में हो गए। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं गोपियों से, जो लोग अपना मन मुझ में लगा लेते हैं उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। भगवान कहते हैं, जिस तरह की अग्नि में पकाए गए बीज अंकुर नहीं बना सकते, अंकुर नहीं बन सकते, उग नहीं सकते हैं। जो बीज उबल जाए या भून जाए तो वो फिर अंकुरित नहीं हो सकता। न मैया वेश धियाम कामा कामाए कल्पते वर्जितां कथिता धानां प्रायो बीजाय नेष्यते। तात्पर्य, गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकर्षित थीं, फिर भी अपने मनो तथा अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई, बल्कि वह ब्रह्मांड में ना देखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। अब भगवान क्या कहते हैं, हे बालाओ अब ब्रज में लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। ये शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए तुम्हारे व्रत का यही उद्देश्य था। याता बला ब्रजम सिद्धां मये मारंसते छपां यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान द्वारा आदेश पाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से ब्रज ग्राम वापस आई। इत्यादिष्टा भगवतां लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यन्तपदां भोजं कृच्छान् निर्विविशुर ब्रजम्। तात्पर्य में लिखा है गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती, अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए, उसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके हैं। तो इतनी जो कथा है श्रीमद् भागवत से मैंने सुनाई है। अब गर्ग संहिता में कथा है तो कुछ और उसमें विशेषताएं हैं, इसलिए मैं इससे भी पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें यह बताया गया है कि मिथिलापुर वासिनी जो गोपियां हैं उन्होंने ये विशेष पूजा की कात्यायनी की। तो गोपियों के अलग अलग प्रकार के युद्ध थे, तो जो मिथिलापुर वासिनी गोपियां थी इनकी कथा ये नारद जी सुना रहे हैं। किसको? नारद जी। ये कथा कृष्ण का चरित्र नारद जी सुना रहे हैं। किसको? राजा बहुलास को। नारद जी कहते हैं हे राजन मिथिलेश्वर, वो राजा बहुलास भी मिथिला के राजा हैं, और मिथिलापुर वासिनी गोपियों की कथा सुना रहे हैं कि इन्होंने कैसे कृष्ण को प्राप्त किया। तो अलग अलग प्रकार की जो गोपियां हैं वो अलग अलग प्रकार के व्रत करती हैं। तो जो मिथिलापुर वासिनी मतलब भगवान राम के समय में जो मिथिलापुर की स्त्रियां थीं तो राम को पति बनाना चाहती थीं, तो वो जो है ना गोपियां बनी। अब इस जन्म में वो कृष्ण को पति बनाती हैं। तो कहते हैं कि ये जो कथा है ये दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। इस कथा को सुनने से दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम श्रृणु मैथिल दशाश्वमेध तीर्थ से फलदम भक्ति वर्धनम। श्री रामचंद्र जी के वरदान से ये मिथिला की जो स्त्रियां हैं नौ नंदों के घरों में उत्पन्न हुई। नौ नंद थे। नंद किसको कहते हैं? जिसके पास 900,000 गौएं हों उसको नंद कहते हैं। कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता है नंदराज। नंदराज नंदराज किसको कहते हैं? इसके पास कितनी गौएं हों? 1,00,000। नंदराज एक ही थे, कृष्ण के पिता नंदराज है एक ही थे जिनके पास 1,00,000 गौएं हैं। लेकिन नंद नौ है और नौ नंद उसको कहते हैं जिसके पास 900,000 गौएं हों, ठीक है ना। तो ये नौ नंदों के घर में उत्पन्न हुई हैं। कौन? मिथिला की जो स्त्रियां हैं भगवान राम के वरदान से नौ नंदों के घर में उत्पन्न हुई हैं। तो ये परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री राम से बरा जाता नव नंद गृह सुया कमनीयम नंद सूनम दृष्ट्वाता मोह मास्तिता। उन्होंने मार्ग शीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार से पूजा करने लगी। मार्ग शीर से शुभे मासी चक्रुः कात्यायनी व्रतम उपचार है षोडश भीम कृत्वा देवी महिमयी। और अरुणोदय की बेला, अरुणोदय मतलब जब आकाश थोड़ा सा लाल होता है उस समय प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और यमुना जी के जल में स्नान करती थी। अरुणोदय वेलायां स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता आजगमुर गायन्त्यो भगवत गुणान। एक दिन ये वृजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीच कर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। एकदाता स्वस्त्राणी तीरे न्यस्य ब्रजांगना विजहरु यमुना तो ये कराभ्याम सिंच तीर मिथा। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर चढ़कर चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। तासाम वासाम सिसन्नियं भगवान प्रातरागत त्वरम गदम मारुह चौरवन मौनमास्थिता। हिराजन अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोपकन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगी। तान वीक्ष सभासांसी विस्मिता गोप कन्या निपस्थितम मिलो क्या थे सलज्जा जह सुर तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रतीक्षं तो सभासांसी सर्वा आगत्य चात्र अन्यथा नहि दास्यामि वृक्षात् कृष्ण उवाच। हे राजन तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे करके बोली राजन्त्यस्ता शीत जले हसन्त्यः प्राहुरानता। गोपियों ने कहा हे मनोहर नंदनंदन हे गोप रत्न हे गोपाल वंश के नूतन हंस हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगे तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नव हंस महातिहारिन श्री श्याम सुंदर तवोदित मन वाक्यम कुर्मा कथम विवसना किलते पिदास्यः। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं भय तो आपको छू भी नहीं सका है हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की हुई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगे। गोपांगना वसन मुंड नवनीत हारी जातो ब्रजे तिरसिका किल निर्भयोसी वासांसि देहि नहि चेन मथुराधिपाय वक्ष्यामयेन नयमति विकृतम त्वयात्रय। श्री भगवान बोले सुंदर मंद हास से शोभित होने वाली हे गोपांगनाओ यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा सब कुछ अतः तुम तुरंत मेरे कथनानुसार कार्य करो। दासो ममेव यदि सुंदर मंद हासां इच्छन्तु वेति किल चात्र कदम मूले नोचेत समस्त वसनानि नयामि गेहां तस्मात् करिष्यति ममेव वचो विलंबा। सिनार जी कहते हैं राजन तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियां जाले से कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रही। तदाता निर्गता सर्वां जलान गोप्योति वेपिता आनता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्याम शीत कर्षिता कृष्ण दत्ता निवासांसी दधो सर्वा ब्रजांगना मोहिताश्च स्थितास्तत्र कृष्णे लज्जायते क्षणा। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले ज्ञात्वा तासाम अभिप्रायम परम प्रेम लक्षणम आह मंदस्मितः कृष्णः समंतान वीक्षेता वचः। श्री भगवान ने कहा हे गोपांगनाओ तुमने मार्ग शीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। भवती फिर मार्ग शीर्ष कृतम कात्यायनी व्रतम मदर्थम तच्च सफलम भविष्यति न संशयः। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ राज करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। परस्वोहने चाटव्याम कृष्णा तीरे मनोहरे युष्माभिश्चा करिष्यामी रासम पूर्ण मनोरथम। यो कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएं अपने घरों को चली गईं। इत्युक्त्वाथ गते कृष्णे परिपूर्ण तमे हरो प्राप्तानंदा मंदहासा गोप्या सर्वागृहं ययु। तो ये जो है दोनों शास्त्रों से मैंने पढ़ के सुनाई कात्यायनी व्रत की कथा। तो ये जो है मार्ग शीर्ष का महीना है, बहुत पवित्र है और गोपियों ने बहुत ही सावधानी से पूजा की कात्यायनी की। लेकिन इससे ये शिक्षा नहीं मिलती है कि हम लोग कात्यायनी की पूजा करें, शिक्षा तो ये मिलती है कि लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति का। अगर कोई पूजा करे किसी देवता की और कृष्ण को ही अगर प्राप्त करना चाहे तो फिर उसमें बंधन नहीं है। लेकिन अगर कोई देवताओं की पूजा करता है, दुर्गा की या शिव जी की पूजा करता है भौतिक वरदान पाने के लिए, तो उसमें फिर बंधन है ना। तो मुख्य चीज यही है। तो अच्छा यही है कि सीधे हम कृष्ण की पूजा करें, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गोपियां कृष्ण की पूजा नहीं करती हैं, क्योंकि कृष्ण को जो है एक मनुष्य भाव में वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो इसलिए उनका जो माधुरी प्रेम है तो उसमें बाधा पड़ेगी अगर वो कृष्ण की पूजा करेंगे। इसलिए वो कृष्ण की पूजा न करके कात्यायनी की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा संभव नहीं है, हमें तो जो है कृष्ण की पूजा करना है, कृष्ण को ईश्वर समझ करके। तो वो समय वो स्थान नहीं है कि इस प्रकार की पूजा की जाए। तो मुख्य चीज यही है कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। ये जो लीला भगवान ने की है इसमें उनकी अवस्था 7 साल से भी कम थी, क्योंकि आगे 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे और ये 22वां अध्याय चल रहा है। इसलिए भगवान को इस लीला से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि 7 साल से भी छोटी अवस्था है भगवान की। अब यही जो कथा है ब्रह्म विवृत पुराण में जिस प्रकार से वर्णन हुआ है उसको मैं सुना रहा हूँ। ये जो कथा है भगवान नारायण नारद जी से बता रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। ये वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास मार्ग शीर्ष में गोपांगना ही प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रही। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवी का आवाहन करके नित्य प्रति पूजा किया करती थी। गोपियां चंदन अगुरु कस्तूरी कुंकुम नाना प्रकार के मनोहर पुष्प भांति भांति के पुष्पहार धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अनेकानेक फल मणि मोती और मूंगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। अब पूजा का मंत्र ये है, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्बे, तुम्हें जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो, तुम हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। हे देवी जगता माता सृष्टि स्थिति अंत्यकारिणी नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देही सुम्रति। इस स्तव से ब्रजांगनाओं ने 1 महीने तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन और नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन वे गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के द्रव्य मनोहर वस्त्र यमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना जी की उस तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगुरु और कस्तूरी की वायु से सारा तट प्रांत सुरभित था। भांति भांति के नैवेद्य फल धूप दीप सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुई। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गईं। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र चुराकर वहां रखी हुई खाने की वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब के सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नग्न स्नान कर रहे हो। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र पुष्पहार और व्रत की वस्तुएं जो है रखी थी, किसने चुरा ली? जो स्त्री व्रत काल में नग्न स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए। अब तुम नंगे होकर घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तुएं हैं। वे जल में नग्न खड़ी हो विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोले, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए और पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़ भक्ति और विनय के साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद, तुम्हें हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं, वे समय आराध्य देवता की संपत्ति हैं। उन्हें दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगे। श्याम सुंदर, इस समय उनके अलावा अन्य वस्तुओं को ही अपना भोजन बनाओ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ये सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हुआ। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गईं। उन्होंने जल में योगासन लगाकर श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया जो ब्रह्मा शिव अनंत शेषनाग तथा धर्म के भी बंदनी एवं मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भावातिरेक से उन गुणातीत परमेश्वर की स्तुति करने लगी। गोलोकनाथ, गोपीश्वर, मेरे स्वामी, प्राण वल्लभ, दीन बंधु, दीनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राण वल्लभ हे दीन बंधो दीनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। गोपेश्वर, गो समुदाय के ईश्वर यशोदानंद वर्धन नंद नंदन सदानंद नित्यानंद आपको नमस्कार है। गोपेश गो समूहेश यशोदानंद वर्धन नंदात्मज सदानंद नित्यानंद नमोस्तुते। इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के दर्भ का भी दलन किया है। काली दमन प्राणनाथ श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। सतमन्योर मन्यु भग्न ब्रह्म दर्प विनाशक काली दमन प्राणनाथ कृष्ण नमोस्तुते। शिव और अनंत के भी ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, परात्पर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म बीज आपको नमस्कार है। शिवानंते से ब्रह्मे से ब्राह्मणे से परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज नमोस्तुते। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज गुणातीत, गुण स्वरूप, गुण बीज, गुणाधार, गुणेश्वर आपको नमस्कार है। चराचर तरोर बीज गुणातीत गुणात्मक गुण बीज गुणाधार गुणेश्वर नमोस्तुते। प्रभु आप अनिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि हैं, तपस्वी आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज हैं, आपको नमस्कार है। अनिमा आदि के सिद्धीश है सिंधे सिद्धि स्वरूपक तपस तपस्वी तपसाम बीज रूप नमोस्तुते। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है वह सब आपका ही स्वरूप है, आप ही उन दोनों के बीज हैं, सर्व बीज रूप प्रभो आपको नमस्कार है। यदि निर्वचनीयम चा वस्तु निर्वचनीयकम तत्स्वरूप तयोर बीज सर्व बीज नमोस्तुते। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा और वेद माता सावित्री ये सब देवियां जिनके चरणार बिंदुओं की अर्चना से नित्य पूजनीय हुई हैं, उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। अहम सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, श्रुति, प्रसूम यस्य पादार्चयान् नित्यं पूज्यं तस्मै नमो नमः। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं उन भगवान को मेरा नमस्कार है। इर्स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। यूं कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूठे काठ के समान अविचल भाव से स्थित हो गई। ठूठा काठ मतलब जो बिल्कुल हिलता नहीं है, ऐसी राधा हो गई। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। इत्येव मुक्त्वा सा देवी जले सन्यस्य विग्रहम मना प्राणांश्च श्री कृष्णे तस्थौं स्थाणुं समासती। राधा कृतं हरे स्तोत्रं त्रिसंध्यं या पठेन्नदा हरिभक्तिं जदास्यं च लभेन्द्राधा गतिं ध्रुवम्। जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान एवं स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई दिया। फिर उन्होंने यमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देख करके राधा ने इसे अपना स्वप्न समझा। जिस स्थान पर जो द्रव्य पहले रखा गया था वस्त्रों सहित वह सब गोपकन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। जैसे मानो कृष्ण ने कुछ लिया ही नहीं हो। फिर तो वे सब देवियां जल से निकल कर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गई। समाप्ति के दिन गोपियों से श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1000 गऊ और 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वो घर जाने को तैयार हुई। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए और भिक्ष मंगों को धन बांटा। इसी समय दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थी। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी और रत्न के आभूषणों से विभूषित थी। उनके 10 भुजाएं थी और रत्नों के जो है आभूषण धारण किए हुए रथ से तुरंत उतरकर राधा जी को हृदय से उन्होंने लगा लिया। दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे सादर बातें कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा, पार्वती बोली, राधे तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से बढ़कर प्रिया हो। जगदम्बिके तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी क्या तुम गोलोकनाथ गोलोक श्री शैल बिरजा के तट रास मंडल उद्दीप मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान श्याम सुंदर के उस चरित्र का स्मरण होता है जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं? तुम श्री कृष्ण की अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्वी हो। समस्त देवियां तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई हैं। फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्री हरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्री हरि तुम्हारे प्राण है। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है। फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन ना पा सके। फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम तो साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुवंश में उत्पन्न नृप श्रेष्ठ स्वयं तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे। फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार